संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 22 मई 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। कोविड 19 के सिलसिले में फैले दुष्प्रचार व नफरत को टक्कर देने के लिए वेरीफाइड नाम की संयुक्त राष्ट्र की नई पहल। वैश्विक ताजा स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा के लिए हुई विश्व स्वास्थ्य असेंबली की वर्चुअल बैठक। चक्रवाती तूफान अम्फन ने भारत और बांग्लादेश में मचाई तबाही, सुनिएगा एक इंटरव्यू। जॉर्डन के जातारी शरणार्थी शिविर में बनाया गया अनोखा लेगो रोबोट जो लोगों के हाथ साफ रखने में करता है मदद, और इनके अलावा होंगे कुछ और समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। इस ऐप में बाई ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए ताज़ा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड 19 महामारी के दौरान फैलती झूठी सूचनाओं और नफरत संदेशों पर लगाम कसने के इरादे से एक नई पहल शुरू की है। इस मुहिम के जरिए दुनिया भर में लोगों को सशक्त बनाया जाएगा ताकि सटीक जानकारियां साझा करके लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा मिल सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को वेरीफाइड यानी प्रमाणिक मुहिम की शुरुआत की जिससे डिजिटल माध्यमों पर भरोसेमंद और सटीक जानकारी की मात्रा और पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल फर्स्ट रेस्पोंडर्स की एक टीम तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अपने वर्चुअल माध्यमों में अपनी जगह उन लोगों के लिए नहीं छोड़ सकते जो झूठ, डर और नफरत फैलाते हैं। गलत जानकारी ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जरिए फैलती है। इसे फैलाने वाले लोग आधुनिक प्रोडक्शन तरीकों और संदेशवाहक माध्यमों का सहारा लेते हैं। वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को इसका मुकाबला करने के लिए लोगों तक पहुंचना होगा और उन तक ऐसी जानकारी पहुंचानी होगी जिस पर वे भरोसा कर सकें। वेरीफाइड मुहिम का नेतृत्व यूएन का ग्लोबल कम्युनिकेशंस विभाग कर रहा है और यूएन न्यूज़ इसी विभाग का हिस्सा है। यूएन कम्युनिकेशंस विभाग की प्रमुख और अवर महासचिव मलिसा फ्लेमिंग के मुताबिक अनेक देशों में गलत सूचनाएं डिजिटल माध्यमों से फैल रही हैं जो महामारी पर जवाबी कार्रवाई के रास्ते में बाधा खड़ी कर रही हैं और अशांति भी फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि व्यथित करने वाले ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिनमें इस संकट का इस्तेमाल नेटिविज्म को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। वेरीफाइड मुहिम के जरिए इन रुझानों को पलटा जाएगा और मानवीयता को बढ़ावा देने, शरणार्थियों व प्रवासियों के योगदान को रेखांकित करने वाली सामग्री को प्रोत्साहन मिलेगा। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य असेंबली के वर्चुअल सत्र में वैश्विक महामारी कोविड 19 के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्र रूप से समीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी WHO के प्रदर्शन के मूल्यांकन की बात भी कही गई है। विश्व स्वास्थ्य असेंबली यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के कामकाज के वार्षिक निरीक्षण से जुड़ा आयोजन है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कोरोना वायरस अब तक करीब 50 लाख लोगों को संक्रमित कर चुका है और 3.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतिहास में पहली बार 18-19 मई को यह असेंबली जिनेवा में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। कोविड 19 पर पारित प्रस्ताव को संगठन के सभी 194 सदस्य देशों ने समर्थन दिया है। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि इससे वैक्सीनों, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य उपायों पर काम की रफ्तार तेज होगी और बाधाओं को हटाया जा सकेगा। यूएन एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसिस ने कहा कि कोविड 19 के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्र रूप से समीक्षा जल्द से जल्द उपयुक्त समय पर शुरू की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 73वें सत्र के दौरान कार्यकारी बोर्ड में भारत सहित 10 नए सदस्य देशों का चुनाव भी हुआ जिसके चेयरमैन भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। कम और मध्य आय वाले देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या लगातार बढ़ने पर चिंता जताई गई है। साथ ही ध्यान दिलाया गया है कि स्वास्थ्य प्रणालियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बाल टीकाकरण सहित सभी अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी महामारी के दौरान जारी रहें।
संयुक्त राष्ट्र और साझीदार संगठनों के राहतकर्मी भारत और बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान अम्फन से बुरी तरह प्रभावित हुए लोगों तक मदद पहुंचाने के काम में जुट गए हैं। बुधवार को पूर्वी भारत के तटीय इलाकों से टकराने वाला ये सुपर साइक्लोन अपने साथ बर्बादी लाया और प्रभावित इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान करके चला गया। तूफान के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली में यूएन न्यूज़ हिंदी की सहयोगी अंशु शर्मा ने बातचीत की रंजनी मुखर्जी से, जो कि संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के भारत कार्यालय में विशेषज्ञ हैं। सुनिए ये इंटरव्यू।
बहुत ही विनाशकारी था। इसकी हवा की गति 155 to 165 किलोमीटर थी और ये तटीय क्षेत्र में 185 किलोमीटर तक चली। वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली व्यापक विनाश किया है ये चक्रवात। चारों तरफ पेड़ उखड़ गए हैं, पावर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया है। इन टोटल वेस्ट बंगाल में 7 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। अब तक की जो आंकड़े हमारे पास है, 72 लोग जान गंवा चुके हैं। ओडिशा में इम्पैक्ट कम हुआ है, ओडिशा से ज्यादा खाए क्षति की कोई डेटा नहीं मिला है। और ये माना जाता है कि चक्रवात उम्फुन अब कमजोर हो गया है और फिलहाल बांग्लादेश के ऊपर सेंटर है।
तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां थी पहले से? जो हाई इम्पैक्ट एरियाज थे वहां से कितने लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था?
साइक्लोन ओडिशा और वेस्ट बंगाल दोनों राज्यों को इम्पैक्ट करने वाले थे, तो दोनों राज्य में इवैक्यूएशन किया गया था। ओडिशा गवर्नमेंट ने लगभग 1.5 लाख पीपल को इवैक्यूएट किया था और पश्चिम बंगाल सरकार ने 5.5 लाख पीपल को इवैक्यूएट किया था। और इवैक्यूएशन के टाइम सरकार ने कोविड प्रिवेंशन की सारी मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश किया है। शेल्टर होम्स में जितनी कैपेसिटी है उससे कम लोगों को रखा गया है। शेल्टर होम्स में मास्क, वाटर, सोप की प्रबंधन किया गया है। कोविड के ऊपर जागरूकता के लिए कई सारे काम किया गया है, जैसे आईसी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एनजीओस के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बट ग्राउंड पे फिर भी चैलेंजेस है।
जैसे कि आपने कहा पहले कि भारत से साइक्लोन बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया था, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ की कुछ जानकारी है?
ये साइक्लोन अभी लैंडफॉल के बाद काफी वीक हो चुकी है और अभी इसको टेक्निकली डिप्रेशन कहा जा रहा है और ये बांग्लादेश के ऊपर सेंटर्ड है और ये माना जा रहा है कि अगले 3 to 5 घंटे के अंदर ये और वीक हो जाएगी। बांग्लादेश में भी कुछ डैमेजेस की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बांग्लादेश में ये साइक्लोन काफी वीक हो गया था तो वहां पे इतनी ज्यादा डैमेज नहीं हुई है।
पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है कि हालात बेहतर हो सके और जानो माल का नुकसान ना हो?
भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, तो आपदा तैयारियां, प्रतिक्रिया और शमन के क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस हुई है और पर्टिकुलरली चक्रवात जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में, दैट इज साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट पे भी बहुत काम हो चुकी है। भारत के पास एक रोबस्ट साइक्लोन प्रेडिक्शन, वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। कम्युनिटी प्रिपेयरनेस एंड रिस्क कम्युनिकेशन के ऊपर भी बहुत काम हुआ है, लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे राज्य में गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी एक साथ मिलकर कम्युनिटी के साथ बहुत काम करते हैं। लगभग सभी राज्य में राज्य से पंचायत स्तर तक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक संस्थानीय ढांचा उपलब्ध है।
हम ध्यान दिलाते हैं कि इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पिछले कई वर्षों से युद्ध से बदहाल यमन में वैश्विक महामारी कोविड 19 का फैलाव पहले से ही गंभीर हालात को और विकट बना सकता है। देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं और अतिरिक्त वित्तीय मदद के अभाव में ढह जाएंगी। मानवीय राहत मामलों में समन्वय के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने ये चेतावनी शुक्रवार को जारी की है। महामारी पर नजर रख रहे विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कई अन्य देशों की तुलना में यमन में नाजुक हालात में रह रहे लोगों में वायरस ज्यादा तेजी से और व्यापक स्तर पर फैल सकता है, जिसके घातक नतीजे होंगे। यूएन एजेंसी के प्रवक्ता येंस लार्क ने जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि हालात बेहद गंभीर हैं और देश में मानव स्वास्थ्य प्रणाली ढह गई लगती है। पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के कारण लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है, उनके पास पर्याप्त निजी बचाव उपकरण नहीं है। उनके मुताबिक यूएन एजेंसी ये मानकर चल रही है कि वायरस स्थानीय समुदाय में व्यापक स्तर पर फैल रहा है। यमन में महज आधी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों पर ही सुविधाएं उपलब्ध रह गई हैं। ऐसे में देश में राहत अभियान के लिए इस साल के अंत तक $2 अरब तक की मदद का उपलब्ध होना बहुत अहम बताया गया है। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र और सऊदी अरब 2 जून को एक वर्चुअल संकल्प कार्यक्रम का आयोजन करेंगे ताकि मदद पहुंचाने के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने बुधवार को एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मानव विकास पथ पर प्रगति में पिछले 3 दशकों में पहली बार गिरावट आने की आशंका है। वैश्विक महामारी कोविड 19 के स्वास्थ्य प्रभावों के अलावा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में व्यापार असर से मानव विकास की दिशा में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निकोलाय म्लादेनोफ ने फिलिस्तीनी में पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों को इसराइल द्वारा फिर से छीने जाने की कार्रवाई सहित किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से फिलिस्तीन और इसराइल को वार्ता की मेज पर वापस लाने के कूटनीतिक प्रयास कमजोर होंगे। जॉर्डन के जैतारे शरणार्थी शिविर में नवीकरण का इस्तेमाल करके एक ऐसा लेगो रोबोट बनाया गया है जो हाथ लगाए बिना ही लोगों की हाथ सफाई में मदद करता है। संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयासों के तहत इस तकनीक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एक संक्षिप्त फीचर के साथ अंशु शर्मा।
जातारी के शरणार्थी शिविर की इनोवेशन लैब में शरणार्थियों ने लेगो से बना रोबोट प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। इससे बिना छुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जातारी इनोवेशन लैब के सीरियाई शरणार्थी प्रशिक्षक मारवान बताते हैं,
हमने ये रोबोट इसलिए बनाया है कि शरणार्थियों के रूप में हम भी कुछ योगदान दे सके। हम भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं।
जातारी इनोवेशन लैब के सीरियाई शरणार्थी प्रशिक्षक मारवान के शब्द। ये लेगो रोबोट मारवान और रोबोटिक्स का अध्ययन करने वाले अन्य शरणार्थियों ने शिविर में स्थित नवाचार प्रयोगशाला में बनाया है।
इस रोबोट को बनाने का उद्देश्य है जैतारी शिविर में स्थानीय और शरणार्थी समुदाय की सेवा करना और शिविर के बाहर स्थानीय इलाकों में और समूचे जॉर्डन में सभी को उपलब्ध कराना।
जातारी इनोवेशन लैब के सीरियाई शरणार्थी प्रशिक्षक मारवान के शब्द। मारवान को उम्मीद है कि उनके आविष्कार से प्रेरणा लेकर अन्वेषण के नए रास्ते खुलेंगे और शरणार्थियों की प्रतिभा निखरेगी। मारवान कहते हैं,
यहाँ तक कि जिन लोगों को रोबोटिक्स का अनुभव था उन्होंने भी हमसे इस रोबोट के डिजाइन और प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा। हमें शरणार्थियों के रूप में सभी की मदद करनी चाहिए, इसलिए हमने उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी जिससे उन्होंने अधिक रोबोट बनाए।
दातारी इनोवेशन लैब के सीरियाई शरणार्थी प्रशिक्षक मारवान के शब्द। सीरियाई नव प्रवर्तकों के इस समूह ने जॉर्डन के जुबली सेंटर फॉर एक्सीलेंस से रोबोटिक्स की शिक्षा ली है। अब वो शिविर की नवाचार प्रयोगशाला में अन्य शरणार्थियों को रोबोटिक्स सिखाते हैं।
कला, संस्कृति, विरासत और लाखों करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत चाय महज एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। गुरुवार 21 मई को पहली बार मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख तिजानी मोहम्मद बांडे ने टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा में चाय के योगदान की सराहना की। कुछ और जानकारी अंशु शर्मा से।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था ताकि ग्रामीण विकास और टिकाऊ आजीविका में चाय की अहमियत को रेखांकित किया जा सके। महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने कहा कि ये सोचना अविश्वसनीय है कि चाय के एक प्याले में मौजूदा समय में दुनिया के बहुत से बुनियादी मुद्दों का सार है। उन्होंने कम आय वाले कुछ देशों में चाय उद्योग को आय और निर्यात के जरिए मिलने वाले राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बताया और कहा कि चाय उत्पादन और प्रसंस्करण कार्य से विकासशील देशों में लाखों लोगों का जीवन यापन होता है। चाय बेहद अहम नकदी फसलों में शामिल है।
तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।